21 मई 1967 राष्ट्रीय क्लास था उसके साथ है 6 जून 1967 दूसरे दिन के अंत में बात कर रहे थे जाती बातों की धारणा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं क्या पक्का पक्का धारण करना है याद की तो जरूर धारणा करनी है क्योंकि गायन है योग बल से विश्व की बात है याद से सब कुछ प्राप्ति हो सकती है कोई में धारणा नहीं है मुरली की पॉइंट से याद नहीं रहते हैं गंधस्थ के झंडकों में बुद्धि जावड़ी हो गई है जैसे माताएं हैं बच्चों की पालना में पैदा करने में सारी बुद्धि खप जाती है जाति धारणा नहीं कर सकते हैं तो याद तो कर सकते हैं बाबा को याद करते हो जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहां पर बैठ करके स्मरण करें यहां तो कोई बंधन झंझट आदि नहीं है घर में तो बाल बच्चों आदि का वातावरण होता है वो वातावरण देकर के नशा गुम हो जाता है ऐसे तो बहुत सहज है जून 1967 की वाणी का टीचर थी उनको भी संभव सहज है वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं यहां कोई कंठ आदि करने की बात नहीं है यहां तो जो भी गीता ज्ञान है उसको समझने की बात है सिख लोग भी गुरु ग्रंथ साहब कंठ कर लेते हैं अभी तुमको क्या कंठ करना है कंठ माने गला तुमको क्या गले से लगाना है गीता पाठी ब्राह्मण तो गीता को कंठ कर लेते हैं सिख लोग जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को कंठ कर लेते हैं गले में बांध लेते हैं तुमको क्या कंठ करना है तुमको किसे किससे किसको गले से लगाना है एक बाबा को कैसे लगाएंगे बाबा को गले कैसे लगाएंगे याद से क्या याद करेंगे कंठ में क्या याद करेंगे कंठ में क्या लगाएंगे उन व्यक्ति को माँ बच्चे को गले लगाती है बाप बेटे को गले लगाता है भाई बहन को गले लगाता है तो याद तो आती है ना तुम किसको गले लगा रहे हो बाप कौन सा बाप आत्माओं के बाप को गले लगा रहे हैं हम साकार और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार, और बिंदु के यहाँ गले लगा देंगे, बाप को गले लगा देंगे, माना बाप भी दो है, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जिसका पिता कोई साकार में होता नहीं, वो कौन है? शिव बाप आते हैं तो परिचय देते हैं कि तुम बिंदु बिंदु आत्माएं हो, मैं तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं, लेकिन परिचय कैसे देते हैं? बिंदु तो निराकार है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, उनको अपना मुख तो है नहीं, और जन्म मरण के चक्र में तो आते नहीं, तब जब जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते, गर्भ से जन्म ही नहीं लेते, तो आकर के कैसे परिचय देंगे? कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेद माना विद माना जानकारी, जिससे बनता है विद्वान, जानकारी रखने वाला, विद्वता, कहीं की विद्वता, आत्मा की विद्वता, परमात्मा की विद्वता, सृष्टि चक्र की विद्वता, सारी दुनिया का सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ है, उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं हो सकता, वो सुप्रीम सोल शिव है जो वेदों की भाषा सुनाता है। शास्त्रों में कहते हैं पुराने से पुराने शास्त्र हैं वेद, वेद निकले ब्रह्मा के मुख से, लेकिन वो वेदों की ऋचाएं अगर हम देखें, उनके अर्थों को भी हम अनुवाद करके पढ़ें या सुने, तो हमारी समझ में कुछ भी आता नहीं। एक ऋचा दूसरी ऋचा से कोई तालमेल ही नहीं बैठता। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से बोली हुई शिव बाबा की ये मुरली है, जिसका तालमेल किसी की समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या बोला है, लेकिन बाबा की वाणी का एक एक शब्द अर्थ सहित है। जो अर्थ सहित बताता है, अनर्थ तो कुछ भी नहीं, जो अर्थ बताता है वो अर्थ समझने और समझाने की चीज है, लेकिन मुरली में बोला है इस ब्रह्मा को तो शिव बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। क्या ब्रह्मा बेबी है? बेबी माना जितना मुख से सुना दिया उतना तक याद है। ओम राधे मम्मा को बेबी नहीं कहा, किसको कहा? ब्रह्मा को। माने ओम राधे मम्मा जो है वो तो फिर भी कोई एक पॉइंट को उठा करके ढेर सारा विस्तार कर देती थी, उनकी बुद्धि बहुत तीखी थी, वो तो बुद्धि की देवी कही जाती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है वो मुरली जितनी शिव बाबा उनके मुख से चलाते थे उतनी याद रहती, बस उसका गुह्य अर्थ क्या है ये ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं आता। इसलिए बोला मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है, तुम बच्चों को सुनाता हूं इनको नहीं सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इनको तो जन्म लेना है कृष्ण बच्चे के रूप में, ये तो रचना है सृष्टि की पहले पहला पक्का है, ये रचयिता नहीं है, नई सृष्टि रचने वाला ये प्रैक्टिकल में नहीं बनेगा। नई सृष्टि जो बनेगी उसमें ये ब्रह्मा क्या बनेगा? कृष्ण बच्चा बनेगा, पहला पक्का बनेगा, माने इससे मेरा काम होने वाला नहीं है। मैं किस लिए आया हूं? नई सृष्टि रचने के लिए। तो नई सृष्टि रचने के लिए मैं आया हुआ तो हूं, इसके मुख से ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन जो भी ज्ञान सुनाता हूं वो ये नहीं कह रहा है कि समझता, ये देवी बुद्धि है। फिर किसके द्वारा ये कार्य होना है? नई सृष्टि की रचना का कार्य करने के लिए साकार तो चाहिए, वो जो भी नई सृष्टि की रचना करने वाले साकार हैं उनमें कोई तो मुख्य होगा, राधा कृष्ण तो रचना है नई सृष्टि की, उस रचना को जन्म देने वाले जो रचयिता हैं वो ज्यादा पावरफुल होंगे या रचना ज्यादा पावरफुल होगी? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो रचयिता है बाप, वो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो पहला पत्ता है उसका भी बाप, वो ही मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो बीज है मनुष्य सृष्टि का, उस बीज में मैं प्रवेश करके नई सृष्टि रचता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कही थी, कही की स्थापना ब्रह्मधर्म की स्थापना, ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। हाँ, ब्रह्मा जो है वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म बतरवासी बनता है, और प्रजाति का ब्रह्मा कभी सूक्ष्म बतरवासी नहीं बनता, वो प्रजा के साथ ही रहेगा। प्रजा की 500 700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच से अपना पार्ट बजाकर वापस परम धाम न जाए तब तक वो वापस नहीं जा सकता, उसको सारी सृष्टि की आत्माओं का उद्धार करने के लिए निमित्त बनना है। निमित्त माने साकार, बनाता कौन है उसको? निमित्त कौन बनाता है? शिव बाबा। शिव बाबा और शिव बाप इसमें भी फर्क है, बाप कहा जाता है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्मा सब आपस में भाई भाई, भाई बहन भी नहीं, और भाई भाई का बाप शिव बाप, भाई बहन कब बनते हैं? जब शिव बाप प्रवेश करता है साकार करने, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म या प्रजापिता ब्रह्म। तो जो बच्चे पैदा होते हैं मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को चेंज करते हैं, दूसरों के जीवन को परिवर्तन करते हैं, वो कहे जाते हैं ब्राह्मण बच्चे, उनमें ब्राह्मणियां भी हैं ब्राह्मण भी हैं, तब कहा जाता है आपस में भाई बहन। तो सारी मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा की औलाद हो गई। किस ब्रह्मा की औलाद हो गई? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, कहते हैं ब्रह्मा के पांच मुख पंचानन, ब्रह्मा के चार मुख चतुरानन, कौन से ब्रह्मा की औलाद है सारी सृष्टि? तो कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की सारी सृष्टि औलाद है। प्रजापिता ब्रह्मा एक होता है और ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं। यदि कि आदि में दादा लेखराज उनको साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन उनके गुरु ने नहीं दिया, गुरु को पता ही नहीं था ये सब क्या है, तो गुरु से उनकी श्रद्धा हट गई। वाराणसी में पहुंचे विद्वान पंडित आचार्यों के पास, उन लोगों से पूछा हमारे इन साक्षात्कारों का अर्थ क्या है, वो लोग भी नहीं बता सके। वहां से भी बाबा को खिन्नता हो गई, विद्वान आचार्यों से भी खिन्नता हो गई। फिर अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने बहुत होशियार समझा, बहुत अनुभवी समझा था, उस व्यक्ति के पास पहुंचे और वो व्यक्ति था उनका भागीदार। दुकान में आधे आधे का हिस्सेदार था, पहले नौकर था, बाद में उसको आधे का हकदार बना दिया कि दुकान हमारी, पैसा हमारा और मेहनत सारी तुम्हारी, होशियारी सारी तुम्हारी, जो भी बचेगा आधा आधा करे तो भागीदार हुआ। भागीदार माने मेहनत उनकी और पैसा ब्रह्मा। तो भागीदार को उन्होंने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ, इस दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझा और वहां पहुंचे कलकत्ते की गद्दी में। कलकत्ते की गद्दी में जाकर के उनसे वो क्लेरिफिकेशन सामने रख दिए, लेकिन वो जो क्लेरिफिकेशन है वो परमात्मा शिव ही प्रवेश करके दे सकता है, उन साक्षात्कारों का अर्थ और कोई नहीं दे सकता। दादा लेखराज ने जिस माता को निमित्त बनाया ये सब साक्षात्कार सुनाने के लिए, वो माता ने भागीदार को सारी बातें सुनाई, भागीदार ने सुना, जैसे ही एक तरफ सुना, सुनाने वाली माता ने सुनाया और वैसे ही उसने समझा और समझाया। तो सुनाने वाली माता ने सुनाने और सुनने का काम किया, ये हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। भक्ति मार्ग में होता है सुनना और सुनाना, और ज्ञान मार्ग में होता है समझना और समझाना। तो उस व्यक्ति के द्वारा जो उन साक्षात्कारों का रहस्य समझाया गया, जो दादा लेखराज ब्रह्मा को हुए थे, सफेद कोष का साक्षात्कार माना, दादा लेखराज ब्रह्मा को सफेद कोष ब्रह्मा के रूप में यहां कार्य करना है, और वैकुंठ का साक्षात्कार जहां राधा कृष्ण खेल रहे हैं। तो सफेद कोष के साक्षात्कार के साथ ही साथ जब ये साक्षात्कार हुआ कि राधा कृष्ण वैकुंठ में खेल रहे हैं, तो वो बुद्धि में बैठाया गया कि तुमको इस रूप में अभी जन्म लेना है, नहीं सकती। अब बाबा को तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार हुए थे, उनको ये निश्चय बैठ गया, विश्वास बैठ गया। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, वो भी बुद्धि में बैठ गया। विनाश का साक्षात्कार हुआ, वो भी बुद्धि में बैठा कि अब ये दुनिया जाने वाली, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, मुझे अब नई दुनिया में जाकर के कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। उनको पक्का हो गया, बाबा को वैराग आया कलकत्ते की गद्दी छोड़ करके, और सिंध हैदराबाद में आकर के सत्संग करने लगे। जिन जिन आत्माओं को दृष्टि देते थे वो साक्षात्कार में चली जाती थी, ध्यान में चली जाती थी। ध्यान में जाकर के देखती थी सफेद कोष और फिर देखती थी कृष्ण। तो सबको बुद्धि में ये समझ में आ जाता था, ये दादा लेखराज कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हैं और ब्रह्मा के रूप में ये अभी कार्य कर रहे हैं। सिंध हैदराबाद की आबादी उस समय 9 लाख थी, 9 लाख आत्माओं ने उस समय ये संदेश ले लिया कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है और अभी कृष्ण का संसार आने वाला है। वो 9 लाख आत्माएं कोई दूसरी नहीं है, वही सृष्टि की आने वाली आत्माएं जो 9 लाख सितारे संसार की गाए जाते हैं। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये सितारे हैं सृष्टि की आदि में जो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, वो चैतन्य सितारे। यज्ञ की आदि की वो आत्माएं आज तक यज्ञ में आ रही है, उनमें 4.5 लाख हैं जन्म देने वाली राधा कृष्ण जैसे बच्चों को, और 4.5 लाख हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली। माना आधी आत्माएं जो है वो माता पिता के रूप में कार्य करने वाली रचयिता के रूप में कार्य करती हैं, और आधी आत्माएं रचना के रूप में कार्य करती हैं। उन रचना की रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सर्वोपरि आत्मा है कृष्ण की आत्मा, माने ब्रह्मा की आत्मा। रचना में ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ, और रचयिता वर्ग की जो 4.5 लाख आत्मा है उनमें सबसे श्रेष्ठ राम वाली आत्मा। लेकिन राम के बारे में मुरली ने क्या बोल दिया, राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो क्या कोई दूसरे पास हो गए? कोई ऐसी आत्माएं हैं जो पास हो गई? क्या फाइनल एग्जाम हो गया? अभी तक फाइनल एग्जाम हुआ है क्या? यज्ञ के अंदर जो भी ज्ञान चल रहा है उस ज्ञान का फाइनल एग्जाम हो गया? नहीं हुआ। फाइनल एग्जाम है ही नष्ट हुआ स्मृति लगता, और वो लास्ट का लाइन है। अभी भी पढ़ाई चल रही है, जो भी आत्माएं पढ़ रही है, उन पढ़ने वाली आत्माओं में माया किसी को जानने वाली नहीं है। क्या ये कोई अहंकार न करे कि हम माया के ऊपर विजय पाने वाले हैं? जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। बाप की ये पहल है कि मैं जो नई दुनिया स्थापन करके जाऊंगा, और माया की ये पहल है कि मैं जो नई दुनिया स्थापन नहीं होने दूंगी, मैं बाप की पहचान भी नहीं होने दूंगी। तो यज्ञ के आदि से ही वो माया यज्ञ के अंदर घुसी हुई थी। माया कोई दूसरी चीज नहीं है, हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही माया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भरे हुए हैं वही माया का रूप है। लेकिन कोई तो आत्माएं ऐसी हैं जो 100% कामी होती है, और 100% लोभी होती है, 100% मोही होती है, नंबरवार तो होते ही। तो नंबरवार आत्माओं में जो काम क्रोध लोभ मोह को अहंकार को धारण करने वाली आत्माएं होती हैं, वो कलयुग में होती है 100% कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, या सतयुग में होती है या द्वापर में होती है? कलयुग में भी, कलयुग के अंत में। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी न बनती हो। माया किसी को छोड़ती नहीं। माया जब किसी को नहीं छोड़ती तो ये कहना है कि राम फेल हो गया और सब पास हो गए या कोई एक पास हो गया, ये बात बनती नहीं है। सारी दुनिया में माया अपना पसारा फैलाती है और वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है, संपन्न नहीं बनने देती है। अभी तक भी कोई छाती ठोक करके ये नहीं कह सकता है कि मैं संपन्न बन गया, मैं संपूर्ण बन गया, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया। कारण क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अभी भी पढ़ाई जारी है, पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप सिर्फ जो पढ़ाई पढ़ाता है वो माँ के रूप में भी पढ़ाता है और फिर बाप के रूप में भी पढ़ाता है। माँ के रूप में बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और बाप के रूप में हायर एजुकेशन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वो बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। चार संबंध हो गए, माँ, बाप, टीचर और सदगुरु। माँ के रूप में प्यार किसने दिया? वो प्रैक्टिकल स्वरूप कौन, जिसने माँ के रूप में इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया बच्चों को कि खुद का भले हाथ फेल हो गया लेकिन बच्चों को ऊपर एक भी उंगली नहीं उठाई, कोई पुरुषार्थ नहीं की, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, इस शक्ति की बड़े से बड़ी माँ, इतना सहन शक्ति और कोई माता धारण कर नहीं सकती। कोई पत्थरवाल भी आता था बाबा के पास तो बाबा उसको भी इतना प्यार देते थे कि वो एक सेकंड की दृष्टि और बात बाबा की भूल नहीं पाता था। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिए। जो आया सारा उनको प्यार होता है। तो वो था ज्ञान चंद्रमा का पार्ट। चंद्रमा अर्थात शीतल रोशनी देने वाला। शीतल रोशनी जो होती है चंद्रमा की, उसमें कीड़े मकोड़े जैसी दुखदायी आत्माएं भी पलती हैं। वो यज्ञ के अंदर आज से ही, जब से सिंध हैदराबाद से जमा हुआ जमा, सब धर्मों की आत्माएं इकट्ठी होकर के सिंध हैदराबाद में पहुंच गई और सबने आकर के ब्रह्मा से अपना पालना का जो वर्षा है वो ले लिया। हाँ, उसका रिटर्न कोई ने अच्छा दिया और कोई ने नहीं दिया, ये तो हमें सबको मालूम है कि द्वापर युग से जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं हिंदू धर्म की आत्माएं ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। हिंदू कभी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए हैं लेकिन दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होकर के हिंदू बने हो ये कभी नहीं हुआ, सिवाय लास्ट में जब आर्य समाज आता है तब। और ये लास्ट आर्य समाज तो अभी 100 वर्ष के अंदर आए, इन्होंने सबको खुली छूट दे दी, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। लेकिन लास्ट की तो बात ही नहीं, लास्ट की बात इसलिए नहीं है कि लास्ट में भगवान भी आता है, भगवान भी आकर के सब धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माओं को खींचता है और खींच करके सिंध हैदराबाद में और आत्माओं को सत्संग करा के आगे बढ़ाता है। तो जो भी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन अलग अलग धर्मों की आत्माएं सारी इकट्ठी हुई, उन अलग अलग धर्मों में इकट्ठी हुई आत्माओं में से वो आत्माएं कौन है जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के एक ही जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेती है? सृष्टि की आदि में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, वैश्यवंशियों में ऋषियस आए, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि आए। तो इन धर्मों में कौन से धर्म की आत्माएं ऐसी हैं जो सबसे पावरफुल और सबसे आदि की है? सूर्यवंशी। तो वही सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो सूर्य से ज्ञान लेती है, इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है मैं जब आता हूं तो सूर्य को पहले पहले ज्ञान देता हूं। सूर्य और चंद्रमा ये दो रंगमंच के हीरो हीरोइन हैं। सूर्यवंशी राम कहा जाता है और ब्रह्मा चंद्रवंशी कहा जाता है। ब्रह्मा ज्ञान, चंद्रमा ब्रह्मा, जिसने बहुत प्यार दिया इस सृष्टि को, और शक्ति के प्यार के आधार पर अपने स्वरूप को ये भी नहीं देखा कि मुझे प्राप्ति क्या होगी। संसार में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा ने इस बात की परवाह की कि मेरे भी मंदिर बने, मेरी भी मूर्तियां बने, मेरी भी पूजा हो? नहीं परवाह की। क्यों नहीं की? क्योंकि दुनिया की जो भी माताएं हैं वो माताएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ स्वाहा कर देने वाली होती है। हमारी भारतीय परंपरा में अब तक भी, थोड़ी वर्ष पहले तक, बच्चों को वर्षा मिलता था, माता को वर्षा नहीं मिलता था। क्या प्रॉपर्टी में जो भी बच्चे होते थे उनको वर्षा दिया जाता था और माँ को वर्षा नहीं मिलता था, बच्चियों को भी वर्षा नहीं दिया जाता था। सारा वर्षा किसको दिया जाता? बच्चों को दिया जाता। ये परंपरा कहां से पड़ी? कहीं से तो ये परंपरा शुरू हुई होगी। ये संगम युग से परंपरा शुरू हुई। भगवान जब बाप आते हैं तो दो प्रकार की मालाएं तैयार होती है, एक होती है रुद्रमाला और एक होती है विजय माला। रुद्रमाला के लड़के पहले तैयार होते हैं, वो रुद्रमाला जो रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, संसार में विकराल रूप धारण करके जो भी आतताई वंश के धर्म है उन सबको खलास करा देते हैं। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष, रुद्र की आंख, अक्ष माने आंख। जो भी रुद्राक्ष जो लड़के होते हैं उनमें मुख भी बने होते हैं, वो मुख लेने की यादगार है। भगवान बाप ने जिनमें प्रवेश करके सारी सृष्टि को ऐसा ज्ञान सुनाया था, उसकी यादगार है वो रुद्राक्ष के मणके। अब उन मणकों में कोई ऊपर के साइड के, कोई नीचे की साइड के, कोई दाई ओर के, कोई बाई ओर के, कोई ऊपर का मणका, कोई नीचे का मणका, नंबर बार 108 है। 108 मणके जो है उनको बनाने वाला है श्री श्री शिव बाबा। ये बाबा शब्द जो है वो साकार के लिए आया है या निराकार के लिए आया है? साकार के लिए आया। बाबा कहा जाता है ग्रैंड फादर, तो शिव है फादर, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा। वो शिव बाबा आकर के माला तैयार करता है किस स्वरूप के द्वारा, कौन से स्वरूप के द्वारा माला तैयार करता है? ब्रह्मा के द्वारा माला तैयार करता है या प्रजापिता के द्वारा माला तैयार करता है? एक है ब्रह्मा जो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म बतवासी बनता है, एक है प्रजापिता ब्रह्मा जो यज्ञ के आदि में भी था, निमित्त बना ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार को क्लेरिफिकेशन देने के लिए, ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए उसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया गया ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का। तो वो यज्ञ की आत्मा जो आदि में थी राम वाली, जिसके लिए मुरली में कहा राम फेल हो गया, माना यज्ञ से चला गया, फेल हो गया माना कोई कारण बना होगा। क्या कारण बना? यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था उस समय। जो पुरानी संस्कृत की गीता है उसके अर्थ बैठ करके समझाते थे, ओम 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 की ध्वनि लगाते थे। जैसे भक्ति मार्ग में कोई मंत्र ले लेते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, मुख से जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो सारी भक्ति मार्ग की बातें थी। ज्ञान उस समय परिपक्व स्टेज को नहीं था, इसलिए वो आत्मा चली गई। दूसरी क्यों नहीं चली गई? दूसरी इसलिए नहीं गई कि दूसरी आत्माएं आती ही सचरूपी रंगवंशी में बाद में, चंद्रवंशी बाद में आते, इस्लाम वंशी बाद में आते, क्रिश्चियन वंशी, ये सारी आत्माएं बाद में सच्ची रंगी रंगमंच पर उतरती है। पहले पहले वो सूर्यवंशी आत्माएं आती है जो आकर के इस नई सृष्टि को तैयार करती है और पुरानी सृष्टि का ध्वंस करती है, दोनों काम करती है। कराता कौन है उनके द्वारा? शिव बाप। तो शिव बाप ब्रह्मा के द्वारा माला तैयार नहीं करता, किसके द्वारा माला तैयार करता है? वही हमारी आत्मा जो यज्ञ की आग में थी, शरीर छोड़ गई, दोबारा यज्ञ में आती है और दोबारा यज्ञ में आकर के पूर्व जन्म का अपना ब्राह्मण का संस्कार लाती है और यज्ञ में लास्ट में आकर के फास्ट जाकर के परमात्मा शिव का सारा कार्य संपन्न करती है। शिव के डायरेक्शन के आधार, अपनी मनोवृत्त पर नहीं, शिव ने जो भी डायरेक्शन दिया ब्रह्मा के मुख से, उस ब्रह्मा के मुख से दिए हुए सारे डायरेक्शन माउंट आबू की मुरलियों में छपे पड़े, उसके लिए वो ही श्रीमत है। क्या उसके लिए श्रीमत क्या है? कोई व्यक्ति श्रीमत नहीं है, जो माउंट आबू की वाणियां है वो ही उसके लिए श्रीमत है। दूसरी मनुष्य आत्माओं के लिए श्रीमत क्या होती है? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ बोला गया वो तो ब्रह्मा ने ही नहीं समझा। जैसे बोला आज से 10 वर्ष के बाद ये पुरानी दुनिया खराश हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार के चित्र तैयार किए गए हैं यहाँ देंगे, हाँ जी, इसमें नीचे लिखा हुआ है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। ये 66 में ये चित्र तैयार हुआ था, माने 76 में भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई सचिवी दुनिया की स्थापना होने वाली है, लेकिन हुआ तो नहीं। 76 में नई दुनिया आई और न पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ। क्या मतलब था? वो रहस्य को ब्रह्मा बाबा की सोच नहीं समझ सकी। अगर समझा होता तो मेमोरेंडम छपा करके राष्ट्रपति को न दिया होता, अखबारों में ये संदेश न छपाया होता, ये चित्र में ये बात न लिखी होती, क्योंकि समझी नहीं तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं। इसका रहस्य असली तब खुला जब 76 में वो राम की आत्मा जो है वो एडवांस ज्ञान दे करने के लिए निमित्त बन जाती है। वो परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करते हैं, वो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में वो चित्र दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र कौन से देवता को दिखाया जाता है? एक ही देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसे त्रिनेत्री कहते हैं। उस तीसरे नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र। क्या? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र खुलता है, खुलता है का मतलब क्या हुआ? पहले बंद था क्या? जरूर पहले बंद होता है, बाद में खुलता है। जब खुलता है तो पुरानी दुनिया का विनाश होता है। कहते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया का विनाश हो गया, लेकिन कोई भी चीज का विनाश होगा तो पहले सूक्ष्म में होगा या पहले विस्तार में हो जाएगा? हर काम दुनिया का पहले सूक्ष्म होता है। मकान बनेगा पहले दिमाग में नक्शा आएगा, फिर कागज पर नक्शा खींचा जाएगा, फिर बड़े रूप में मकान बनेगा। ऐसे थोड़ी एकदम सीधा 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 नई दुनिया तैयार हो जाती है। ऐसे ही 76 के लिए जो बात बाबा ने बोली थी वो सूक्ष्म बात थी कि नई दुनिया का नक्शा जो है वो कोई की बुद्धि में आ जाता है। वो राम वाली आत्मा जैसे ही ब्रह्मा का शरीर छूटता है उसी वर्ष ज्ञान में आ जाती है। ज्ञान में आने के बाद उसको उस ज्ञान को समझने में, मंथन करने में, चिंतन करने में 8 साल का टाइम लगता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा ऊपर से नीचे आई, आई तो गंगा, लेकिन कहाँ अटक गई? शंकर की जटा में। तो ये शंकर की जटाएं कोई बालों की बात नहीं है, ये तो मस्तिष्क की बात है। उस मस्तिष्क में वो ज्ञान सारा अटका रहा, किसी की बुद्धि में नहीं आया कि ऐसा ज्ञान क्या होता है। फिर दोबारा तपस्या की भागीरथी, उसके बाद वो गंगा बाहर आती। तो वो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान समाया हुआ था सन 68 से लेकर के 76 तक, वो सारा बाहर आने लगा। सन 76 से जब वो सारा ज्ञान बाहर आया तो बात समझ में आई ब्रह्म कुमार कुमारियों की, जिनकी समझ में आई वो एडवांस पार्टी कहेगी। एडवांस पार्टी एडवांस में जाने वाली होती। एडवांस किस बात में? ज्ञान में एडवांस, याद में एडवांस, धारण में एडवांस, और ईश्वरीय सेवा में भी एडवांस। ये चारों ही सब्जेक्ट में जो एडवांस जाते हैं उनका नाम पड़ता है एडवांस पार्टी। वो एडवांस पार्टी को तैयार करने वाला वही परम पिता परमात्मा शिव, जिन्होंने मुरली में ब्रह्मा के द्वारा ये वाक्य बोले हैं कि आगे करके तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। तो क्लास जब ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर भी बदल जाता है। जो भी एडवांस पार्टी में आते जा रहे हैं संक्षेप से, उनके टीचर भी बदल रहे हैं, उनका स्थान भी बदलता जाता है। एडवांस पार्टी में आने वाली आत्माएं मुट्ठी भर आत्माएं होती हैं, थोड़ी सी, वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पड़ती है। क्या किसी देहधारी गुरु से पढ़ाई नहीं पड़ती? किससे पढ़ती है? डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव शंकर में प्रवेश करके सारी पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए संसार में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया गया, क्योंकि शिव बाप है आत्माओं का। बाप आएगा तो बच्चों को आप समान बनाएगा या नहीं बनाएगा? आप समान बनने वाले बच्चों में कोई तो 100% होगा जो बाप समान बनेगा। निराकारी निर्विकारी निहंकारी, तो जो बच्चा ऐसा पुरुषार्थ करके निराकारी स्थिति धारण करता है, निर्विकारी स्थिति धारण करता है, उसका नाम संसार में शंकर के रूप में विख्यात हो जाता है। शंकर नाम क्यों विख्यात होता है? शंकर माना मिक्स, तीन आत्माएं एक ही शरीर में मिक्स होकर के पार्ट में जाती है। एक तो राम वाली आत्मा जिसका शरीर है, दूसरा शिव की सोल जो तीसरे नेत्र के रूप में कार्य करती है, और तीसरा चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिन्होंने 68 में शरीर छोड़ा। वो आत्मा अपना टाइम पूरा करने के बाद प्रवेश कर जाती है। इसलिए प्रवेश करती है, पढ़ाई पूरी करने के लिए, एडवांस ज्ञान लेने के लिए। वो एडवांस ज्ञान लेने वाली आत्मा ब्रह्मा की सोल, उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि गीता का साकार में भगवान कौन है। मुरली में तो बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोला गया, क्या गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। लेकिन बाबा की बुद्धि में ये बात रहस्य नहीं बैठा, क्या कि गीता का साकार में भगवान कौन? गीता ज्ञान दाता है, गीता पति भगवान है, तो गीता पति भगवान साकार होगा या निराकार होगा? गीता माता साकार होगी या निराकार होगी? ये क्योंकि आदि में जो माता थी निमित्त, जिसके लिए मुरली में आया है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, वो बच्चियां आज यदि में है नहीं। जो किसी आदमी शरीर छोड़कर के चली गई थी, वो ही बच्चियां दोबारा फिर यज्ञ में आती है। दोबारा यज्ञ में आती है तो उनमें से एक तीखा बजा तीखा पार्ट बजाती है। तीखा पार्ट बजाने के कारण वो विजय वाला की हेड बनती है, और एक तीखा पार्ट बजाती है तो रुद्रमाला की मुखिया बनती है। दो माताएं थी, दोनों माताएं शरीर छोड़ने के बाद दोबारा यज्ञ में आती है तो दोनों ही विशेष नृत्य बनती है, एक विजयमाला की मुख्य और एक रुद्रमाला की मुख्य। रुद्रमाला की जो मुख्य बनती है वो उसका नाम पड़ता है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। क्या मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में सरस्वती ओम राधे को रखा गया। तन पुरुष का है कि कन्याओं माताओं को संभाल कर नहीं सकता, तो कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए किसको निमित्त बनाया उस समय? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया। अब वही ब्रह्मा जिसकी पूजा नहीं होती है और पुरुषार्थ इतना बड़ा किया, विशाल पुरुषार्थ किया, तो आखिर संसार में उसकी किस रूप में पूजा होती? वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी की उस माता में प्रवेश करता है और जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। जगदम्बा और भारत माता, दो माताएं हो गई। आज भी दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं और उसमें मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड ये टाइटल देते हैं और उनको इनाम देते हैं। ये कहां की यादगार है? भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दो विशेष माताओं को चुनते हैं, एक पार्ट बजाती है मिस इंडिया और एक पार्ट बजाती है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड वो बनती है जो सारी दुनिया की माता है, आसुरी पार्ट बजाने वालों की भी माता है और देवताई पार्ट बजाने वालों की भी माता है, जगत माता है जगदम्बा। उसमें ब्रह्मा प्रवेश करता है, ब्रह्मा माने सारी सृष्टि की बड़ी से बड़ी मां। वो ब्रह्मा उस स्वरूप में, उस चोले में, स्त्री चोले में प्रवेश करके फिर स्वर्ग का उद्घाटन करता है। स्वर्ग का उद्घाटन कौन करेंगी? माताएं करेंगी या पुरुष करेंगे? माताएं करेंगी, माताओं के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन गाया हुआ है। तो माताओं में बड़ी से बड़ी माता कौन? ब्रह्मा जी जब उसे जगदम्बा में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजा जाता है, उसके मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती है और पूजा भी होती है। वही ब्रह्मा जो है निमित्त बनता है नई दुनिया के उद्घाटन के लिए, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो माताओं के द्वारा मैं स्वर्ग का गेट खोलता हूं, तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? ब्रह्मा की सोल ही कोई कन्या माता में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ करती, वही जगदम्बा निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने। नहीं तो ये वाक्य झूठा हो जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। कैसे? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, नई दुनिया की स्थापना कहां हुई? शरीर छोड़ दिया तो नई दुनिया की स्थापना तो हुई नहीं, लेकिन होती ब्रह्मा की सोली ही निमित्त बनती है कोई चोले में प्रवेश करके। और ब्रह्मा की सोल तब निमित्त बनती है जब उनकी बुद्धि में यह बैठ जाता है कि गीता का साकार में भगवान कौन है। गीता माता तो है, साकार में ब्रह्मा। गीता किसके द्वारा आई? गीता ज्ञान किसके द्वारा आया है? अरे गीता ज्ञान जो भी आया वो किसके द्वारा आया? देने वाला तो शिव है, लेकिन किसके द्वारा दिया? ब्रह्मा के द्वारा दिया। लेकिन गीता को ये भी कह दिया कि ये गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, ये गीता ज्ञान तो है लेकिन इसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत जो है वो मंथन किया जाता है तब अमृत निकलता है। माने सनातन जो भी वाणी कहलाई उसको अमृत नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो जो भी ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के द्वारा वो सुनाने वाले ने सुनाया और सुनने वालों ने सुना, लेकिन उसका मंथन किसी ने नहीं किया। वही ज्ञान सागर का मंथन जब किया जाता है तब वो अमृत मंथन निकलता है। अमृत जो है उससे फिर देवताओं का कल्याण होता है। क्या बात की गहराइयां निकलती है, एक एक बात के हिज्जे हिज्जे निकलते हैं, और वो हिज्जे हिज्जे समझाने वाला भी स्वयं परमात्मा शिव है, वो ही टीचर बनता है। सुप्रीम टीचर उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। वो बाप बाप भी है। ये किसी आदमी जिस व्यक्ति में प्रवेश करके ये गीते आज में दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया, मूल रूप में गीता ज्ञान का बीज डाला, वो बीज डालने वाला पिता कहा जाता है। गीता में भी बोला हुआ अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। काहे का बीज? काहे का बीज? ज्ञान का बीज। वो ज्ञान का बीज यदि आदमी ही उस पिता के द्वारा बो दिया तो पिता ही था। पिता का काम होता है आज में बीज बोना आज में बीज बोना ये पिता का काम है, बीच में सारा माता का काम। माता बच्चों को जन्म देती है, माता बच्चों की पालना करती है, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बाप का पार्ट, वो बाप टीचर ही बनता है। टीचर बनता है तो जो भी माता के द्वारा ज्ञान आया है गीता ज्ञान, उस गीता ज्ञान के एक एक वाक्य क्लियरिफिकेशन देता है, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी ये सोचते थे कि बाबा क्या बोलते हैं, कभी एक बात बोल देते हैं कभी दूसरी बात बोल देते हैं। वही मुरली बोलती है कि लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, वही मुरली बोलती है कि लक्ष्मी नारायण तो समझदार है तो विश्व के मालिक है। बस समझ में नहीं आता नहीं क्या चक्कर है। बाप आकर के उसका क्लैरिफिकेशन दे कि लक्ष्मी नारायण सोलह कला संपूर्ण दो है, जिनकी यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर, जहां जहां कहीं भी बने होंगे बिरला मंदिर उनमें जाके देख ले, बाजू में एक मूर्ति रखी हुई है उसे विष्णु का मंदिर कहते हैं। वो विष्णु का मंदिर सतयुग में नहीं विष्णु होता है, विष्णु कौन से युग में होता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कौन से युग के देवता है? संगम युग के देवता। तो संगम युग में विष्णु चतुर्भुज माने चार भुजाएं, आत्मा रूपी चार भुजाएं जिन्होंने संस्कार स्वभाव मिला करके नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न किया था, पालना का कार्य संपन्न किया था, वही आत्मा चार के दूसरी नहीं है। कृष्ण के साथ राधा, इनका दूसरा नाम संगम युग में, ब्रह्मा के साथ सरस्वती ओम राधे, और राम के साथ सीता। इनका संगम युग का दूसरा नाम है शंकर के साथ पार्वती। ये चार आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, ये विष्णु चतुर्भुज। तो वो मंदिरों में दिखाया जाता है विष्णु चतुर्भुज, और एक मुख्य मूर्ति लक्ष्मी नारायण की भी दिखाई जाती है। कोई भी बिरला मंदिर में चले जाओ ये दोनों मूर्तियां ये यादगार बनी हुई है कि दो ही लक्ष्मी नारायण की संसार में पूजा होती है, एक विष्णु और एक लक्ष्मी नारायण। बाकी सतयुग के दूसरे तीसरे चौथे गद्दियों के मालिक हैं, उनकी पूजा होती नहीं है। कहीं होती हो तो बताओ। सत्युग का जो दूसरी गद्दी का नारायण होगा, तीसरी गद्दी का नारायण होगा, चौथी गद्दी का नारायण होगा, उनकी कहीं पूजा है? कोई पूजा नहीं। क्यों नहीं है पूजा? कोई कारण रहा होगा। इसलिए पूजा नहीं है कि वो आत्माएं कम कला वाली है। जब भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, न पढ़ाई पढ़ने के कारण वो 16 कला संपूर्ण सर्व संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, इसलिए वो कम कलाओं वाले रह जाते हैं। वो ही कम कलाओं वाली आत्माएं जो यहाँ कम पढ़ाई पढ़ती है, पूरा एडवांस ज्ञान नहीं उठाती है, वो फिर द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है कि ऊंची से ऊंचे बाप है तो जरूर ऊंची से ऊंची में प्रवेश करेगा ना। ऊंची से ऊंचे बाप कौन दुनिया का? इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, कौन है? शिव। तो जो शिव ऊंची से ऊंचे बाप है वो जरूर ऊंची से ऊंचे नारायण माने संगम युग में जो नारायण बनता है विश्व का मालिक उसमें प्रवेश करता है। संगम युगी नारायण में प्रवेश करके विश्व के मालिक में प्रवेश करके वो नई विश्व की स्थापना करता है। वो ऊंची से ऊंचे बाप का काम हुआ। फिर दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन? ऊंचे ऊंचे बाप आते हैं तो ऊंची से ऊंची में प्रवेश करते हैं। ऊंचे से ऊंचे है संसार का ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व कौन? हाँ, प्रजा पिता। दूसरे बाबा मुरली में भी बोला है गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ब्रह्मा की तीन मूर्तियां क्या? त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है और देवताओं में बड़ा शंकर कहा जाता है, तो इसे साबित हो जाता है। फिर ये भी बोला जिसमें ज्ञान बड़ा है, जिसमें ज्यादा ज्ञान है वो बड़ा है। पता कैसे चले कि ये बड़ा है ये छोटा है? संसार में माला तो तैयार होगी लेकिन माला में ये पता कैसे चलेगा सबसे ऊपर का बड़ा माता कौन है, बड़ी ताकत वाला कौन है? ज्ञान के आधार पर पता चलेगा। ज्ञान से ही संसार की गति सदगति होती है। ज्ञान दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो कि परमात्मा शिव से आती है। ये चीज और कोई दुनिया में दे नहीं सकता। भगवान जो चीज देता है वो कोई नहीं दे सकता। क्या देता है? धन संपत्ति देता है, मकान देता है, दुकान देता है, सेंटर देता है, क्या देता है? ज्ञान देता है। वो ज्ञान माने ज्ञानकारी, काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य की जानकारी दुनिया में किसी को नहीं है सिवाय गॉड फादर ट्रुथ के। गॉड फादर ही ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। वो सत्य बाप आकर के सत्युग की स्थापना करते हैं। जो झूठ खंड के मनुष्य है वो दुनिया को झूठ खंड बनाते हैं और सत्य बाप आकर के दुनिया को सच खंड बनाते हैं। सत्य सत्य की दुनिया बनाते हैं। वो सत्य की दुनिया सिवाय बाप के और कोई ने न बनाई है और न कभी बना दी। अभी वो सत्य बाप आया हुआ लेकिन प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? वो तो बिंदी है, किसी के द्वारा प्रत्यक्ष होता होगा। सत्य की स्थापना के लिए निमित्त तो चाहिए। कोई साकार में निमित्त कौन बनता है? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो तीन पुरियों में तीन देवताएं बैठाए हुए, नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु, उससे ऊपर शंकर। झाड़ के चित्र में भी जहां विनाश हो रहा है आत्मा ऊपर जा रही है तो वहां शंकर का चित्र रखा हुआ। माने शंकर वाली आत्मा जो है वो शांति धाम स्थापन करने के मुख्य निमित्त बनती है। शांति देवा है। कैसा देवता है? शांति स्थापन करने वाला देवता। मनुष्य को पहले क्या चाहिए? सुख चाहिए कि शांति चाहिए? शांति चाहिए। आदमी जब ज्यादा दुखी होता है तो पहले शांति मांगता है, सुख नहीं मांगता। तो शांति सबसे ऊंची चीज है, वो शांति देवा बाप इस सृष्टि पर अभी आ चुका है। वो ही बाप अभी बता रहे हैं कि बच्चे मेरे को गले लगाओ। क्या है वो? तो गीता कंठ कर लेते हैं, गीता को कंठ लगाते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब को कंठ लगाते हैं, तुम किसको कंठ लगाओ? है बाप को। बाप बिंदी के रूप में नहीं आया हुआ है कि बिंदी तुम गले में लगा लो। बाप तो साकार में आया हुआ है। वो साकार में बाप आया हुआ मुरली में ही अंजाम करके गया है ब्रह्मा जी द्वारा। क्या बोला? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे और साथ साथ अपने घर जाएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं ब्रह्मा के रूप में आया और शरीर छोड़ के चला गया तो वो काम पूरा हो गया, नहीं। अंत तक साथ देगा। जब तक नई दुनिया कंप्लीट नहीं बनी है तब तक बाप का साथ रहेगा। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक बाप हमारे साथ रहेगा। हाँ, रहेगा उन बच्चों के साथ जो बाप को प्यार करते होंगे, हैं? जिनका प्यार ऐसा होगा नष्ट होगा स्मृति तक। देह और देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से जिनका पूरा मोह नष्ट हो गया, एक बाप के सिवाय और उनका कोई दूसरा इस संसार में नहीं, उनके साथ रहूंगा, अंत तक भी रहूंगा।